राम राम हरे हरे। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान के भक्तों की ओर से इस नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर शिवालय के अंदर आप सबका तीसरे दिन भागवत कथा अमृत में स्वागत है। जैसे नर्मदेश्वर नर्मदा नदी का नाम है, भारत में एक बहुत पवित्र नदी है उसको नर्मदा कहते हैं। गंगे च जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी जलेस्मिन सिंधिम करु, ये सारे तीर्थ की नदियां उनमें से एक नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के अंदर एक स्थान पे ओम के आकार का आइलैंड है। जैसे आपका मॉरिशस आइलैंड समुद्र के अंदर है ना, वो नर्मदा नदी के अंदर एक ओम के आकार का आइलैंड है। उस ओम के आकार के आइलैंड के ऊपर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, उसको नर्मदेश्वर भी कहते हैं ओंकारेश्वर भी कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। तो आते हुए नाम पढ़ा नर्मदा ईश्वर शिवालय का नाम, ये है नर्मदा ईश्वर वाला, ये कोने पे नाम लिखा है। हरे कृष्ण बोलो। तो भगवान शंकर परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, गणानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो, जैसे सब देवताओं में भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, जैसे सब नदियों में गंगा है, जैसे सारे वैष्णव में भगवान शंकर परम वैष्णव है, वैसे सारे पुराणों में भागवत महान पुराण है। और हम भागवत महापुराण के शिक्षाओं के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में आपके साथ आज कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे जो 3 दिन से हम कथा कर रहे हैं। और ये मूल श्लोक हमारे सत्संग का ये है, भगवद गीता के 4th अध्याय का 9वां श्लोक, कि भगवान का जन्म दिव्य कैसे है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। अर्जुन, जो मेरे जन्म को दिव्य मानता है, अलौकिक मानता है, मेरी लीला को डिवाइन मानता है, उसको तत्व से जानता है, वो जन्म मृत्यु से मुक्त होता है और वापस मेरे पास आता है। तो भगवान का जन्म दिव्य कैसे है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले दिन आपको बताया था, तो भगवान तब आते हैं जब उनको कोई बुलाता है। और भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार के लिए जो जन्माष्टमी का उत्सव अपन मना रहे हैं, ये भगवान का झूला रखा है, इसको फिर ऊपर रख देंगे। आप सब आके इसको भगवान को झूलाना, ये आपको सेवा साल में एक बार जन्माष्टमी में मिलती है, नहीं तो पंडित जी पूजा करता है मंदिर में। आज आप सबको भगवान छोटे बन के सेवा का मौका देते हैं। तो कौन भगवान को बुलाने गया था? धरती, ये पृथ्वी जो हम सबको धारण करती है। इस पृथ्वी के 3 रूप हैं। एक शेप में ये पृथ्वी, एक फॉर्म में ये आपको दिखती है, पहाड़ है, समुन्द्र है, खेत है, दैट इज व्हाट वी कॉल अर्थ। इसको बोलते हैं मटेरियल फॉर्म ऑफ द अर्थ, आदि भौतिक रूप। देवता के रूप में पृथ्वी आदि देव रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय पृथ्वी का देवी का रूप है। और गाय की विशेषता क्या है? सहनशीलता, टॉलरेंस। पृथ्वी सबको धारण करती है और सबको सहन करती है। तीसरा पृथ्वी का रूप है आध्यात्मिक, डिवाइन स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द मदर अर्थ। वो मदर कहते हैं उसको, माँ कहते हैं उसको, भू देवी कहते हैं। दक्षिण भारत के साउथ के जितने भी कोविल में जाओगे, टेंपल में जाओगे, भगवान विष्णु के लेफ्ट साइड में लक्ष्मी होगी, तो एक लक्ष्मी भगवान के साथ लक्ष्मी भगवान की पत्नी है और एक अचल भू देवी भगवान की पत्नी है। भू पृथ्वी को कहते हैं, भूलोक है ये। तो पृथ्वी आध्यात्मिक रूप से भगवान की पत्नी भूदेवी है, विष्णु पत्नी। पंडित जी जो पूजा करते हैं, आसन को पवित्र करते हैं, वो मंत्र में कहते हैं पृथ्वी विष्णु पत्नी, आप विष्णु की पत्नी हो, इसलिए हम पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं। आठ माताएं शास्त्र में बताई हैं हमारी, उनमें से एक माता पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी जब तक बैलेंस होता है धार्मिक और अधर्मी पीपलों का, तब तक पृथ्वी सहन करती है। लेकिन जब अधर्मी लोग, पापी लोग बढ़ जाते हैं 90% से ऊपर, और विशेष रूप से जब पापी राजा बनते हैं, जब वो किंग बनते हैं और उनकी आर्मी चारों ओर से अत्याचार पापाचार करती है, व्यभिचार करती है, भ्रष्टाचार करती है, तो पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है। उस वक्त पृथ्वी अपील करने के लिए इस भौतिक जगत के अधिपति ब्रह्मा के पास जाती है। ब्रह्मा भगवान का बेटा है तो पृथ्वी का भी पुत्र ही हुआ, और ब्रह्मा जी को पृथ्वी कहती है कि धरती का अब ये भार मेरे से सहा नहीं जाता, यहाँ पापी अपराधी लोग बहुत बढ़ गए हैं। किसी ने हमसे पूछा कि अभी भी अपराधी लोग ज्यादा है, बहुत लोग पापी हैं, चारों ओर चोरी चल रही है, बदमाशी चल रही है, बेईमानी चल रही है। और मैं सत्य कहता हूं कि आज से 50 साल पहले हमारे यहां इतने मंदिर नहीं थे, इतने ज्यादा कोई प्रचार भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बहुत ईमानदार थे, बहुत मेहनत करने वाले थे, भगवान में विश्वास करने वाले थे। अब जितना धर्म का प्रचार हो रहा है उससे ज्यादा लोग और बेईमान हो रहे हैं, लोगों के अंदर कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं आ रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि समय के साथ कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है और इतना जल्दी से बढ़ता जा रहा है कि इतने सारे, अभी मॉरिशस में जितने आज शिवालय हैं, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले इतने थे क्या? 50 साल पहले इतने थे? 50 ईयर्स बैक देयर वर सो मेनी। पहला शिवाला वो गोकुल, क्या गोकुल कहते हैं, क्या कहते हैं, 62 गोकुला का 62 का है, तो कुछ भी नहीं था। तब लोग बहुत बड़े, मुझे विश्वास है उस वक्त में लोग घरों में बैल थे, गाय थे लोगों के पास, ठीक है, नहीं थी गाय बैल, लोग धोती पहनते, बड़े बुजुर्ग पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, लोग भगवान की कथा करते थे अपने घर में, पड़ोस में बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर, लेकिन बहुत बड़ी विश्वास वाले लोग थे। अब तो दिखावा धर्म का ज्यादा हो गया है, लेकिन धर्म के ऊपर चलने वाले बहुत कम हो गए हैं। और पृथ्वी जब ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे से इस आतिताई राजाओं का, इस आतंकवादियों का, इन टेररिस्ट का, जो पृथ्वी के पुत्रों को, साधुओं को, संतों को सता रहे हैं, धर्म का, धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनका भार नहीं सहा जाता, तो ब्रह्मा जी ने कहा पालन करना भगवान विष्णु का कार्य है, मैं तो सर्जन करने वाला हूं, चलो भगवान विष्णु को प्रार्थना करने चलते हैं। तब भगवान शंकर जी को साथ ले लिया कैलाश से, और स्वर्ग से इंद्र जी को साथ ले लिया, देव ऋषि भी साथ हो गए, और सबने भगवान को जाकर प्रार्थना की खीर सागर के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण नारायण विष्णु, पृथ्वी माता का संकट आपको प्रार्थना करने के लिए हम सब आए हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा मैं पृथ्वी के संकट को जानता हूं, जो धरती के ऊपर हो रहा है वो सब मैं जानता हूं, भगवान अभी भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। तब हमसे किसी ने पूछा कि अभी इतना अत्याचार है तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, अगर आप दुख से, तकलीफ से, परेशानी से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से बचना चाहते हो तो चैतन्य महाप्रभु का ये इसका एंसर, उत्तर सुन लो। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, और जो उस नाम का सहारा ले लेगा, आश्रय ले लेगा, नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेगा, वो नाम उसकी रक्षा करेगा। कलयुग का युग धर्म भगवान का नाम है। रामायण में बहुत सुंदर लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम में अवतार लिया है। इस हरे कृष्ण मंत्र में भगवान ने कलयुग में अवतार लिया है। और सत्य तो ये है, इस इस्कान के गर्भ में कृष्ण भावना के हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा पूरे विश्व में भगवान ने अवतार लिया है। जो भाग्यशाली है वो इस मंत्र का जप करके अपने जीवन को कलयुग में सार्थक कर लेंगे, अपने आप को भगवान के भक्त बना लेंगे और सब संकट से छुड़ा लेंगे। लेकिन जो अभी भी मूर्खतावश और कहीं भगवान को ढूंढने का प्रयास करेंगे वो निष्फल रहेंगे, उसको कहीं से कोई साधन मिलने वाला नहीं है। ये रामायण का भी, भागवत का भी। भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? भागवत के अंदर 12वें स्कंद में कलयुग का जो रूप है वो बताया गया है कि कलयुग में कितना लोग दुखी होंगे, कैसी कैसा वातावरण होगा। बड़ा एक दो अध्यायों में कलयुग के, जैसे पहले गाते थे कि कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये भजन में लोग गाते थे कि राम जी कल सीता से कह के गए थे कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना का मतलब साधु संत महात्माओं को, बिचारों को भिखारी की तरह घूमना पड़ेगा, और बदमाश लोग जो कौवे हैं, जो काँ-काँ करके सारी दुनिया को, वो राजा महाराजा बन के बैठ जाएंगे। ऐसा कलयुग का प्रभाव राम जी सीता को कहे गए। ऐसे पांडवों में भी आते, कहे गए सहदेव, कहे गए सुनो रे पांडवों, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर में कुछ बूढ़ी माताएं 5-7 ऐसे कांका राम 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 करती मिलेंगी, मधुशाला भरी मिलेंगी, मंदिर खाली मिलेंगे, शराब के बार के अंदर कुर्सी खाली नहीं मिलेगी, और मंदिर में काफी कुर्सियां खाली दिखाई देंगी। यह कलयुग का, ये बहुत बड़े कवि कलयुग का बड़ा सुंदर चित्रण करके गए हैं। एक तो आधुनिक आर्य समाज के महात्मा ने कहा कि पहले तो मंदिर में घंटी बजती थी तो ओम जय जगदीश हरे की आरती होती थी, अब तो ओम जय चाय की प्याली, कप और चाय सुबह सुबह उठ के बिस्तर से उठते ही जरूर मिले, पर यही घंटी बजती है, इससे बगैर कोई जागता नहीं। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, ये भारत के अंदर बैठ के संत लिख रहा है, दूध की नदियां बहती थी यहां इतना दूध था कि दूध पैसों का कभी भारत में नहीं बिका। दूध को और पूत को, पूत का मतलब बेटा, पुत्र को और दूध को रतन माना जाता है, वो कभी बिकता नहीं है। दूध कभी नहीं बिकता था भारत में, कब से दूध बिकने लगा? इस देश में दूध की नदियां बहती थी, दूध में पड़ गई पत्ती काली, ओम जय चाय की प्यारी। जब से ये चाय आई और दूध के अंदर काला कर दिया उसको, तब से दूध बिकने लगा और पीने के लिए मिलना मुश्किल हो गया। तो ये संत हो या सन्यासी, सबको ये भांति। महात्मा भी कहता है हमको चाय पहले दो, बाद में कथा करेंगे। जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली, जो इससे बचे वो भाग्यशाली। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि कलयुग के जहां दुर्गुणों का वर्णन है, जनपदा अट सूला, जनपद कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, वहां एडमिनिस्ट्रेशन होगा नहीं, सच्ची कथा आपको बताता हूं। डाकुओं ने पाकिस्तान में एक बस को लूटा और सारे यात्रियों से पैसे इकट्ठे हुए 16,000 रुपीज। तो चोरों ने पैसे लेके, डाकुओं ने डेक्वाइट्स बोला टेक योर मनी बैक। तो एक हमारे जैसा बैठा था, कुछ भी नहीं था उसके बाद, तो बोला बस को रोका, एक घंटा खराब किया, पैसे लिए, वापस क्यों दे रहे हो, व्हाई यू आर गिविंग बैक। उसने बोला कल जब अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा कि बस लूट गई है, तो पुलिस को हमको 20,000 एक चोरी के देने पड़ते हैं, आपसे तो 16 मिले, क्या चार हम अपने घर से भरेंगे, वी गॉट ओनली 16, इसका 4 वी शुड पुट फ्रॉम अवर पॉकेट। कल कम से कम कहेंगे लूट के वापस देंगे तो हमारे वो घर से तो नहीं भरने पड़ेंगे ना। तो गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये पांडवों की कथा में आता है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, चार भाइयों को बाहर खड़ा किया था कि किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान करना जब तक मैं श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं। तो एक आदमी भागते हुए दूर से आया और आते ही कहा महाराज युधिष्ठिर से मिलना है। भीम खड़ा था, मैं खड़ा हूं, मुझे बोलो, भीम कहता है आपकी समस्या क्या है। बोला समस्या मेरी ये है, मैंने एक वेल को देखा, कुएं को देखा, एक आदमी ने अंदर से बाल्टी पानी की निकाली और पानी निकालकर 8-9 उसके पास बर्तन थे, मटके थे, पाट थे, वो फुल कर दिए। भीम ने कहा बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बाल्टी होगी, ताकत वाला आदमी होगा, निकाला होगा। बोला दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है वो जो भरे हुए 9 मटके थे, 9 जो पाट भरे हुए थे, वापस बाल्टी में डाला, बाल्टी आधी भी नहीं थी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, अंदर से पानी निकाला एक बाल्टी और 9 बिग पाट फुल हो गए, और 9 फुट पाट वापस बाल्टी में डाले, बाल्टी आधी भी नहीं, इज ए प्रॉब्लम। भीम ने बोला दिस इज वेरी डिफिकल्ट, कोई असुर होता, किसी ने परेशान किया होता तो गदा उठा के सर फोड़ देता, लेकिन ये तो महाराज से पूछना पड़ेगा। इतनी देर में दूसरा आदमी पूछने के लिए आया, महाराज से मिलना है। कहा महाराज तो अभी भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में बैठे हैं, आप बोलिए आपकी समस्या क्या है। अर्जुन ने कहा, बोला समस्या क्या है, समस्या ये है एक बहुत सुंदर खेत था, एक फील्ड थी, बड़ा अच्छा उसके अंदर प्लांटेशन की थी, उसके चारों ओर फेंसिंग किया हुआ था। बोला बहुत अच्छा फेंसिंग किया था, कोई अंदर गधा घास गाय नहीं खाने जाएगा, कोई गाय पशु नहीं जाएगा, और आदमी आजकल पशु से ज्यादा बदमाश है, चोरी करते हैं, गधा भी खेत में जाएगा तो एक शूशु खाएगा, लेकिन आदमी तो पूरा बोरी भर के उठा के जाएगा है? तो पशु से इतना डर नहीं है, काबरी जाएगी तो थोड़ा सा खा के चली जाएगी बेचारी, लेकिन ये काबरू जाएगा तो सब कुछ काबरू ले जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, गाड़ी भर के जाएगा, ये समस्या है। तो उसने बोला ये बात नहीं है, जो फेंसिंग थी ना चारों ओर से, वही खेत में कूद के खेत को खा रही थी। अरे फेंसिंग तो प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो खेत के कैसे खा रही, बोले खा रही थी। अब अर्जुन बोलता है धनुष से तो मैं सर फोड़ सक किसी का छनली कर दूं छाती को, लेकिन अब ये क्या, मैं बार फेंसिंग बार को क्या करूं, महाराज से पूछ लो। प्रश्न और भी है, एक प्रश्न तीसरा है, सहदेव के सामने आके कहता है मैं रास्ते से आ रहा था, महाराज से प्रश्न पूछने, बोला महाराज अभी थोड़ी देर और भगवान का भजन करेंगे, मैं उत्तर दूंगा, मैं सेवा करूं। बोलो बताओ, बोला बताऊं तो सुन लो, मैं रास्ते से आ रहा था, एक सुई थी, सुई के अंदर छोटा सोराख था, एक आदमी ने पूरे का पारा हाथी एलिफेंट उसके अंदर डाला और निकल गया, एलिफेंट की पूंछ अटक गई, टेल अटक गई, एलिफेंट पूरा निकल गया, एलिफेंट निकल गया, टेल अटक गई। बोला हाँ, तो महाराज उत्तर देंगे, हम तो नहीं दे सकते, तीन बातें करते हैं, फिर एक छोड़ देते हैं पांचवीं बात, तब तक महाराज के दरवाजे के ऊपर पहुंच गया। एक और भी बता देते हैं, चौथे ने आकर कहा महाराज से मिलना है, बोला ठहरो मैं आपका सेवक। नकुल ने कहा, बोला एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, शी काफ को जन्म दिया, और जन्म देते ही गाय उसको खा गई। बोला ऐसे गाय कभी बछड़ी को खाती है? नहीं नहीं, उसको तो चाट के दूध पिलाती। बोला नहीं, खा गई। बोला इसका भी उत्तर नहीं आता। तब तक महाराज के दरवाजे पे पहुंचा, महाराज के दरवाजे पर्दा लगा था और उधर से ही कह रहा है, महाराज महाराज सुनिए। एक पहाड़ का रास्ता था और बहुत नैरो था, और उस रास्ते के अंदर से एक समय एक आदमी जा सकता था, और बहुत बड़ा इतना पत्थर उस रास्ते में गिर गया, रास्ता बंद हो गया महाराज, अब कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। इतनी देर में एक साधु आया, और साधु ने अपना एक ऐसे थ्रेड निकाला, धागा पत्थर में बांधा, ऐसे फेंक दिया, रास्ता खुल गया। महाराज ने कहा इसको पकड़ो पकड़ो, ये कलयुग है, इसको जाने मत देना। तब तक वो आदमी तो भाग गया। चार भाई आके युधिष्ठिर के पास बैठे, बोला महाराज पकड़ने को कह रहे थे वो तो चला गया, कौन था? महाराज बोलने लगे, उससे पहले भीम ने कहा महाराज पहले ये तो बताओ, वो ऐसे प्रश्न पूछे उसका उत्तर हमको नहीं समझ में आया, आप बताओ कि क्या उत्तर दे रहे थे, कौन थे? महाराज ने कहा भैया भीम ये कलयुग था, ये हमको संकेत देने आया था कि भगवान श्री कृष्ण के जाते ही मैं इस धरती के ऊपर अपना साम्राज्य फैला दूंगा, मेरा जो रूल को मैं बढ़ा दूंगा। तो क्या कहने आया था भीम, तुमसे क्या पूछा? बोला मुझे कहा पानी का एक बाल्टी वेल से निकाला, 9 बिग पॉट फुल हो गए, 9 पॉट वापस डाले, आधी भी बाल्टी नहीं थी। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं भैया कलयुग कह रहा था, अभी तक घर में एक पिता कमाता था और 9 बच्चों का पेट पालता था। अभी भी 2-4 घरों में गया, 6 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, ऐसे बहुत से आपके मॉरिशस में एक जनरेशन पीछे देखोगे तो 5-6 भाई मिलेंगे, 2-3 बहनें मिलेंगी। सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? एक बाप 9 बेटियों को पालता था, पढ़ाता था, शादी कराता था, घर बना के देता था। अब कलयुग कह रहा है अब 9 जब इकट्ठे होकर कमाएंगे तो एक बाप को पालना मुश्किल हो जाएगा, घर से बाहर निकाल देंगे। ये कलयुग की पहली पहचान है, और ये कथा हमने जहां बताई वहां सुनने वालों में एक से मुझे रोकर कहा कि मेरे बाप के हम 6 बेटे थे, 6 को पढ़ाया, शादी किया, दुकान खोल के दिए, घर दे दिए, और जब हम अपने घरों में पत्नियों के साथ रहने लगे तो 6 में से 1 भी बाप को घर में रखने को तैयार नहीं था, और हमारे बाप को हरिद्वार छोड़ के आए। सच है कि कलयुग में एक बाप सबको पालता है, लेकिन सब मिलकर एक बाप बूढ़ा हो जाए तो पालने को तैयार नहीं है। ये कलयुग की पहली पहचान है, बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान अब नहीं रह गया है, अब उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। ये ओल्ड एज होम जिसको कहते हैं ना, सीनियर सिटीजन होम, ओल्ड एज होम, इसकी डेफिनेशन क्या है? बदमाश बच्चों के मां बाप के रहने की जगह। इसका राइट नेम ये है कि बदमाश बच्चे जो वहां मां बाप का सब कुछ लूट के ले गए, अब बेचारों को यहां छोड़ के गए। तो दूसरे ने कहा अर्जुन ने कि वो मुझे तो कह रहा था कि फेंसिंग खेत को खा रही थी। बोला कलयुग कह रहा था कि अब जो रक्षा के लिए पुलिस होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिसका काम है कि प्रजा की, जनता की, सिटीजन की रक्षा करे, वही लूटने शुरू करेंगे, टैक्स के रूप में लूटेंगे, और आप क्या कहते हैं उसको, ब्राइब के रूप में पैसा मांगेंगे, नहीं तो काम भी नहीं करेंगे। तो जिसको रक्षा के लिए रखा है वही आपका भक्षण करेगा। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो जो बाजी गार्ड था उसने ही गोली मारी। तो जिसको रक्षा के लिए रखेंगे कलयुग में वही, आजकल भी जहां घरों में चोरी होती है, जो घर में काम करने वाले हैं उनको मालूम है कि सामान कहां है, वही किसी को बुला के चोरी करा के आते, दूसरा बाहर से कोई नहीं आता है। और जिस जो घर के काम करने वाले हैं वही चोरी करवाते हैं। तब तीसरे ने क्या कहा था बताइए, याद है किसी को? तीसरे ने क्या कहा था? सुई के होल में से एलिफेंट निकल गया, पूंछ अटक गई। युधिष्ठिर महाराज कहे कि कलयुग हमको बता रहा था बेटे का जन्मदिन होगा, शादी होगी, लाखों 100,000 रुपीज खर्च कर देंगे और कहेंगे जन्माष्टमी है, आप आइए रात को। महाराज माफ करना, 5 रुपया ले जाओ। पूछ अटक जाएगी और हाथी निकल जाएगा। अपने केवल जन्मदिन मनाने के ऊपर या शादी के ऊपर, तो यहां आपकी शादी को मैंने देखा है, अभी इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं वो। हमने शादियां देखी है कि एक एक बाराती को एक गाड़ी देते हैं, एक गाड़ी एक बाराती को देते हैं, 100 बाराती को 100 कार्स देते हैं, 100 जो आते हैं ग्रूम के साथ एक एक कार देते हैं। लेकिन उसको हम कहते हैं कि जन्माष्टमी के लिए 11,000 रुपीज दो, तो पसीना उसको आने लगता है। महाराज अभी धंधा नहीं है, अभी रिसेशन चल रही है, बाकी सब खर्चे चल रहे हैं, भगवान के नाम में रिसेशन चल रही है। ये हाथी पूरे का पूरे निकल जाएगा लेकिन पूंछ अटक जाएगी। धर्म के काम में आदमी आगे बढ़ के देगा नहीं, ये कलयुग की बड़े से बड़ी पहचान है। किसी के पास जाते हैं ना, सेठ बैठा होगा, हम जन्माष्टमी का आपको निमंत्रण देने आया, वो कहेगा अभी सेठ नहीं है, या कहेगा अभी आदमी कोई नहीं है देने वाला। ऐसे भी हमने देखा है कि जब कोई साधु को देखते हैं कि मांगने वाला आएगा, सेठ टेबल के नीचे छुप जाता है कि सेठ है ही नहीं। हम आंखों से देखी हुई बात कर रहे हैं। लोग देख के साधु को परेशान हो जाते हैं कि कुछ मांग लेगा। अरे 5 रुपया मांगेगा, तुम्हारे तो रोज का अपना खर्च बोतल का 100 रुपये का है, रोज की बोतल का 200 रुपया खर्च करता है, और 10 रुपया घी डालने के लिए, तेल करने के लिए मंदिर में दीप का नहीं दे सकता। और चौथे का प्रश्न क्या था? गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय खा गई। बोला कलयुग में ये इतना इंसान अपने स्तर से गिर जाएगा, गर्भवती स्त्री अल्ट्रासाउंड में देखेगी लड़का है तो बोलेगी कि रहने दो लड़का, और अगर लड़की है तो कहेगी इसकी एबॉर्शन कर दो। यहां आने से पहले मैं भारत में एक डॉक्टरों के मंच के ऊपर हमको बुलाया था, फीमेल फीटिसाइड बंद करो। क्यों पूछा किसी ने, बोला लड़की का रेशा 70% है, लड़के का रेशा 100% है, शादी कहां करेंगे, ये बड़ी परेशानी है। वो मेनी पार्ट ऑफ द इंडियाज में, इंडिया के मेनी पार्ट में, पर्टिकुलरली हरियाणा पंजाब इस तरफ लड़कियां बहुत कम है, क्योंकि लड़कियों को जन्म ही नहीं देने, उससे पहले मार देते। कलयुग का ये सबसे भयानक रूप है, इसलिए इंडिया के अंदर अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कराने के ऊपर गवर्नमेंट का सेंसरशिप है, बैन है, नहीं करा सकते। इससे ज्यादा और घिनौना कौन सा अपराध हो सकता है, अपने हाथों से अपने ही बच्चे को मारा जाए। ये कलयुग का रूप है। और सत्य आपको बताते हैं, हमारे अपने रिश्तेदारों के घर में 2 बच्चे आज पल रहे हैं, एक तो 18 साल का हो गया है, एक 7 साल का है। वो बच्चा कचरे के ऊपर मीन्स गार्बेज में मिला था। हमारे अपने घरों में, 2 घरों में, हमारे रिश्तेदारों के घरों में 2 बच्चे लड़के पल रहे हैं, गार्बेज में सुबह मिला था, जंगल में जाते हुए बच्चा रोता हुआ, जन्म दे के फेंक के आ गए, अभी जीवित हैं, हम उसको देखते हैं रोज। एक कथा हो रही थी कहीं, और जिसने कथा कराई थी उसका इच्छा ये था कि भगवान मेरे को पुत्र संतान करे, दे भी इच्छा थी। कथा के छठे दिन कहीं से आते हुए एक बच्चा उसको गार्बेज में मिल गया और उधर ले आया, बोला भगवान ने किसी तकलीफ के बगैर कथा पूरी होने से मेरे को बच्चा पहले दे दिया। उसको बच्चा ऐसे रास्ते में मिल गया। ये बच्चा भी कोई मां फेंकती है ना, कोई बाप फेंकता है ना। ये कलयुग का भयानक रूप है, ग्रेटेस्ट क्राइम है, सिन है। लेकिन ये सरेआम पढ़े लिखे डॉक्टर, हम उन डॉक्टरों को बोला कौन कराता है अबॉर्शन, तुम लोग कराते हो ना, अब तुम क्यों रो रहे हो, यू आर डूइंग इट, मां जाके बोलती है करो। और फिर पांचवें प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज से पूछा, आपको क्या कहा? बोला मुझे कहा एक ही रास्ता है और बहुत मुश्किल रास्ता एक है, पत्थर गिरा हुआ है, साधु ने उसको हटाया तो रोप से के बजाय थ्रेड से हट गया, नहीं तो कोई रास्ता नहीं था। बोला इसका अर्थ क्या महाराज? बोला भैया इसका अर्थ है कलयुग के अंदर एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न किसी और रास्ते से कलयुग के अंदर भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। और वो रास्ता भी बंद पड़ा है, कोई साधु भगवान का प्यारा भक्त अगर आपको भगवान का नाम देगा तो वो रास्ता खुलेगा, जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। हमने कभी प्रश्न पूछा था एक जगह कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, दो बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, फिर भी आदमी बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बोलिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है? बच्चे पहले हमारे साथ साथ आठ आठ थे तब भी इतना नहीं था, अभी एक एक है तो बढ़ रही है क्यों? हाँ, डोडो की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, कहाँ गया, खत्म हो गया, खा गए, क्या बढ़ क्या रहा है? शेर बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया पूरा डिपार्टमेंट बोलते जंगलों के अंदर हाथी शेर नहीं है, मानव ही क्यों बढ़ रहा है? किसी ने कभी सोचा है क्यों बढ़ रहा है? सुन लो, बच्चे कम पैदा करने से पॉपुलेशन कम नहीं होगी, मरने के बाद भगवान के धाम जाने से यहां पॉपुलेशन कम होगी। अब हम मर के वापस यहां आ रहे हैं और बेचारे पशु प्रमोट होके इंसान बन रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही। ये वैदिक वर्जन में आपको बता रहा हूं। Nobody is going back to Godhead and poor animals are automatically promoted to be human beings. So population will increase. There is no way you can decrease it. जो भी हो, कलयुग का इतना भयानक वर्णन लिखा है शास्त्र में, भागवत में। वह परीक्षित महाराज चिंतित हो गया, सातवां दिन था, आज प्राण त्यागने का दिन था, और महाराज ने कहा मेरी प्रजा इतनी दुखी है, कलयुग में ये पीड़ित हो जाएगी, कलयुग तो सबको दुखी कर देगा। पूछा सुखदेव महाराज, मेरी प्रजा का कलयुग से बचने का कोई रास्ता है? महाराज कृपा करके बताओ, मैं राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं उसको अपनाऊंगा तो मेरी प्रजा जैसे मैं करूंगा वैसे करेगी तो सबका उद्धार हो जाएगा। तब सुखदेव के मुख से ये श्लोक निकला, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुण। पहले तो कह दिया सुखदेव महाराज ने, राजा परीक्षित महाराज, कलयुग दोषों का समुन्दर है, इट इज ओशन ऑफ मिजरीज एंड दोष मीन्स फॉल्ट। महाराज परीक्षित ने कहा समुन्दर को कोई कैसे पार करेगा, हाउ कैन वन स्विम एंड क्रॉस द ओशन? तब महाराज सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्ति एको महागुण, कलयुग में एक वेरी नाइस क्वालिटी है, महान गुण है। परीक्षित का जल्दी बताइए महाराज, अब तो एक दो घंटे मुश्किल से जीने के बाकी बचे हैं, ये तो बारहवें अध्याय का आखिरी पांचवें अध्याय की बात है, बारहवें अध्याय के तेरहवें अध्याय तक परीक्षित महाराज प्राण त्याग देंगे। तो सुखदेव महाराज ने क्या कहा सुनो। कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। अगर कलयुग से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे और भगवान के धाम पहुंच जाओगे। ये भागवत के 12 स्कंद में बहुत क्लियर लिखा है कीर्तन कृष्णस्य। और भागवत कलयुग के लोगों के मार्गदर्शन के लिए व्यास देव ने नारद के समझाने के ऊपर लिखा है। तो कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए, लेकिन आज कृष्ण अवतार की बात करते हैं। पृथ्वी के वहां से आने के बाद वापस ब्रह्मा जी को तो भगवान ने कहा, आप सब देवता लोग जाके यदुवंश में अपने अंश से मेरे सहायता के लिए जन्म ले लो। और भगवान ने यहां आपको पहले दिन कथा बताई है कि वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई इसका 8वां गर्भ तुम्हारे को मारेगा। देवकी को मार नहीं पाया कंस, वसुदेव ने बचा लिया कि इसके सारे बच्चे आपको दे दूंगा, जिससे भय नहीं है, वो जिनसे आपको डर नहीं है, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दोज, आई विल गिव ऑल दोज टू यू। एक टेक्निकल लैंग्वेज बोल दी। वसुदेव का पहला बच्चा जन्म लिया अन, हाँ? उस बच्चे को लाया कीर्तिमान को, उसका नाम कीर्तिमान था। कंस को कहा, महाराज ये पहला बच्चा। कंस ने कहा, इससे मुझे डर नहीं है, मुझे 8वें से डर है, इसको ले जाओ। नारद ने कंस को आके कहा, महाराज विष्णु कभी भी कहीं से 1 से 8, 8 से 1 हो सकता है, आप ऐसे मत करो। कंस ने उस बच्चे को भी मरवा दिया, देवकी को और वसुदेव को जेल में डाल दिया। 5 और बच्चे देवकी ने जन्म दिया और 5 को कंस ने पत्थर के ऊपर देवकी के आंखों के सामने मारा, ये 6 मर गए। ये 6 गर्भ कौन थे? मैंने आपको कल कहा था प्रश्न, ये 6 गर्भ कौन थे? ये इनको बोलते हैं षड गर्भ असुरा, षड गर्भासुर। असुर कहते हैं, सुर का मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करे देवता, और असुर का मतलब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करे। ये षड असुर मरीचि के पुत्र हैं, मरीच मन का प्रतीक है। उनके ये 6 बेटे हैं जिनको ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जाओ असुर बन जाओ, और इन असुरों को फिर श्राप मिला, तुम्हारा बाप तुमको मारेगा, यू विल बी किल्ड बाय योर फादर। तो ये 6 असुर कंस के अपने बेटे थे पूर्व जन्म के। कंस काल नेमी नाम का असुर था और ये उसके 6 बेटे थे जो कंस के हाथों मारे गए अपने श्राप के अनुसार। लेकिन इसके ऊपर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर ने बहुत सुंदर एक शिक्षा लिखी है, आप भी सुन लीजिए। मरीचि हमारे मन का प्रतीक है या रिप्रेजेंट करता है, और मन के 6 विकार हैं। द सिक्स विकार, विकार मीन्स मन के ये 6 दोष हैं। क्या दोष हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, फॉल्स ईगो, लस्ट, एंगर, एनवी, ग्रीड, ये मन के विकार हैं। देवकी भक्ति रूप है, कंस फियर पर्सोनिफाइड है। कंस के भय से भक्ति रूपी देवकी के मन में ये 6 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार हैं, ये जब नाश होंगे तब भगवान का प्रकट्य होगा। तो हम भक्तों को अपने हृदय में ये जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर मतलब एनीवी, मद मीन्स ईगो, इनको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, नाश नहीं करेंगे, तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। भक्ति के हृदय में जब तक ये दोष रहेंगे तब भक्त के हृदय में भगवान प्रकट नहीं होगा।
भयभीत होना चाहिए। भौतिक जगत में कभी भी हमसे गलती हो सकती है।
और तब 6 बच्चों के मारने के बाद भगवान के लिए जगह बनाने के लिए, भगवान बैठेंगे तो उसका आसन होगा ना, हमको यहाँ कथा करनी है तो ये आसन आता है ना, तो भगवान कौन से आसन के ऊपर शयन करते हैं? भगवान शेष आसन के ऊपर शयन करते हैं, भुजब शयनम पद्मनाभम। भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं, इसलिए देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। बलराम जी शेष बलराम जी का एक्सपेंशन है। बलराम जी जब वहां आए तो भगवान श्री कृष्ण ने गौलोक अपने धाम में महा योग माया को बुलाया, कहा योग माया बलराम जी को देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में जाके स्थापित कर लो, ट्रांसफर कर दो इसको, रोहिणी का बेटा है बलराम, अभी मेरे लिए सीट बनाने गया है, वहां शेष को स्थापित करके और फिर बलराम को रोहिणी का पुत्र उधर पहुंचा दो। और सुनो तुम एक और काम करना देवी, तुम यशोदा के घर में अपने आप को पुत्री के रूप में, पुत्री शब्द नहीं लिखा है, तुम वहां देवी प्रकट होना। और फिर लिखा आगे, कहा ये 2 काम करने से देवी तेरी पूजा होगी बहुत नामों से भारतवर्ष में और अन्य स्थानों के ऊपर, विंध्याचल में दुर्गा काली चंडी वैष्णवी नारायणी भद्रा ऐसे तुम्हारी पूजा होगी। और ये कहकर भगवान ने देवी को भेजा, देवी ने ओम करके बलराम जी को उठा के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और इसके बाद भगवान स्वयं, कल हमने आपको कहा था, वसुदेव के मन में आके प्रकट हुए, वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में आ गए। और देवकी के मन में जैसे ही भगवान आए देवकी चमकने लगी, और कंस ने देखा कि विष्णु इसके गर्भ में आ गया है, मेरे को मारेगा, लेकिन मैं देवकी को मारूंगा नहीं, नहीं तो मेरा अपजस हो जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। और कंस चला गया, और उस वक्त जैसे कंस चला गया इसलिए गर्भ देवकी का सामान्य पुरुष और स्त्री का होता है ऐसे नहीं हुआ है, सीधा लिखा है कि जैसे चंद्रमा उगता है ईस्ट में, ऐसे देवकी के हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हुए। जैसे चंद्रमा के उगने को कोई नहीं कहता है कि मून हैज टेकन बर्थ, नो, मून राइजिंग और मून सेट हो गया, सन राइज हुआ सन सेट हुआ, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। और तब जैसे ही भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए तो देवकी का पेट फूलने लगा और लगता है कि देवकी गर्भवती है। उस वक्त ब्रह्मा जी शंकर नारद इंद्र आदि देवता कंस के प्रिजन में आकर देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे। ये सारे देवता श्री कृष्ण के आने से पहले उनको कहा कि आपने हमको वचन दिया था, ब्रह्मा जी ने कहा आप आएंगे, आप अपने वचन के सच्चे हैं, आप निश्चित रूप से आ रहे हैं और हम बड़े प्रसन्न हैं, आप जब आते हैं तब दुनिया को पता लगता है कि भगवान कौन है और आपके चरणों का स्मरण करके उसका बोट बनाकर दुनिया को पार कर जाते हैं साधु संग, साधु संत लोग आप बड़े दयालु हैं, कृपा करके आप अब प्रकट होइए, ऐसे करके देवता प्रार्थना करके बाहर निकले। और जैसे देवता गए वातावरण बहुत, द होल एटमॉस्फेयर बिकम सो पीसफुल, मौसम चेंज हो गई, मौसम तो बरसात की थी, चांद निकलना नहीं था, 8वां दिन था, लेकिन चारों ओर से सुंदर वातावरण बन गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, चारों ओर फूल खिल गए। और रात को 12 बजे का शाम समय हुआ, बुधवार का दिन हुआ, हाँ बुधवार किसको बोलते हैं, मंगल के बाद बुध आता है, गुरुवार, गुरु के बाद बुधवार का मतलब वेनसडे। रात को 12 बजे अष्टमी के दिन अजन्मा भगवान देवकी और वसुदेव के सामने 4 हाथों के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिया, सर के ऊपर क्रीटी मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, कौत्सभ मणि है, श्री वत्स का चिन्ह है, पीला पीताम्बर पहना हुआ है, ऐसे प्रकट हुए। अद्भुत बालकम चतुर्भुजम, उसको देखकर वसुदेव ने प्रणाम किया और प्रार्थना करना शुरू किया। और वसुदेव ने प्रार्थना करके समाप्त की, माँ देवकी ने प्रार्थना की, और फिर कहा, आप प्रकट तो हो गए हैं, लेकिन हमें डर लगता है कंस कहीं आपका कुछ बिगाड़ ले। माँ का भाव था, आप बच्चे बन जाओ, हम आपको छुपाना चाहते हैं, कंस को नहीं दिखाना चाहते हैं। तब भगवान ने बोलना शुरू कर दिया, बोला, आप लोग प्रश्न और शत्रुपा थे, तीन जन्म पहले आपने तपस्या करके मेरे को बेटे के रूप में मांगा था, तब मैं आपके घर में प्रश्नी गर्भा बन के आया। फिर दूसरे जन्म में आप कश्यप और आदित्य हुए और मैं आपके घर में वामन बन के आया, क्योंकि मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए तीन बार मैं आपका पुत्र होके मेरे वचन को सत्य करता हूँ। आज मैं आपके घर में वसुदेव कृष्ण बन के प्रकट हो रहा हूँ। और ये कहकर भगवान एकदम छोटे बच्चे जैसे हो गए, और जैसे छोटे बच्चे जैसे भगवान हुए, उससे पहले वसुदेव को कहा, वसुदेव तुम्हें कंस से भय लगता है, तो तुम ऐसे करो, मेरे को यहां से उठाओ। नंद गोकुल में यशोदा के वहां एक लड़की ने प्रकट हुई है, उस लड़की को लेके आओ, मेरे को वहां छोड़ के आओ। ततस्त सोरेर परचोदयात, भगवान ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव को आज्ञा दी, मुझे ले चलो। आज वसुदेव ने कृष्ण को ऐसे गोदी में उठाया है ले जाने के लिए, जैसे ही कृष्ण को दिल से लगाया है, छाती से लगाया है, वसुदेव के हाथ की हथकड़ी नीचे गिर गई, पांव में जो जंजीर थी वो खुल गई, दरवाजे खुल गए, माया ने सबको सुला दिया, सारे जो गार्ड थे सो गए। वसुदेव बच्चे को लेकर बाहर आया, आकाश में इंद्र ने देखा, ये भगवान हमारी रक्षा के लिए आते हैं, इसको कोई देखना नहीं पाए, पहले तो इसको स्नान करा लेते, थोड़ा सा हल्का हल्का बूंदाबारी होने लगी, जस्ट शावर हुआ रेन का, और फिर एकदम बादल आए और इतनी बरसात होने लगी कि आंख के सामने कोई चीज दिखाई न दे। उस वक्त शेष जो बलराम जी छोड़ के गए थे वो कृष्ण के ऊपर छाता बन गए, वसुदेव के सर के ऊपर अब कृष्ण ढका हुआ जा रहा है। वसुदेव जमुना के किनारे पहुंचे और इतनी बरसात के कारण जमुना तो पैसिफिक समुद्र की तौर और ऐसे विरल पुल की तरह चल रही थी, भय लगने लगा, लगना चाहिए, लेकिन वसुदेव भगवान को जो हाथ में लिया हुआ जमुना के अंदर प्रवेश किया, पानी गले तक आया, पानी यहां तक आया। वसुदेव ने कृष्ण को सर के ऊपर ऐसे धारण कर लिया, इसलिए ये फोटो कृष्ण का हमको दिखना है, दिखने में आता है, नहीं तो अभी बच्चा पैदा हो टोकरी में कोई लेके नहीं जाता है, कोई टोकरी में बच्चों को उठाता है क्या, कभी कोई सब्जी थोड़ी है कि टोकरी के ऊपर लेके जाएगा, बच्चे को तो आदमी छाती में ऐसे लगा के जाएगा, तो ऐसे ही ले जा रहा था, लेकिन पानी जब यहां से ऊपर आया तो उसने अपने मरने की परवाह नहीं की, बच्चे को बचाने के लिए ऊपर किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने अपना चरण ऐसे नीचे जमुना जी को छुआ, क्योंकि जमुना कालिंदी के रूप में कृष्ण की चौथी पटरानी है, क्वीन है, वो कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, और जैसे ही भगवान ने कालिंदी का स्पर्श किया, कालिंदी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ऐसे रास्ता दे दिया जमुना ने जैसे श्री रामचंद्र ने हिंद महासागर ने श्री रामचंद्र को रास्ता दिया था, ऐसे लिखा है भागवत में। और उस तरफ योग माया ने नंद गांव में सबको सुला दिया था। वसुदेव ने जाके यशोदा के वहां अपने बच्चे को छोड़ के बच्ची को लेके वापस आया, सब चीजें वैसे की वैसे, जमुना ने रास्ता दे दिया, चौकीदार सोए मिले, गार्ड दरवाजे खुले मिले, अंदर आए, बच्ची को नीचे रखा, हाथों में हथकड़ी पड़ गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बच्ची ने रोना शुरू किया। कंस को बुलाने गए, रात का 3 बजा होगा, कंस उसी वक्त बाल खुले हुए जाग रहा था, बड़ा भयभीत था, आया और देवकी ने कहा, भैया ये लड़का नहीं है, लड़की है। आज देवकी ने कहा कि मैं इसको बचाने का प्रयास नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे यशोदा की बेटी थी इसलिए मरने के लिए दे दी, अपने बच्चों को दे दिया तो मेरे थे इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की, आज मैं सचपच प्रार्थना करके कंस तुम्हें कहती हूँ, ये बेटी है, लड़की है, ये मेरा आखिरी बच्चा है, इसके बाद बच्चा होने वाला नहीं है, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ये बड़ी होगी तो तेरे लड़के को विवाह के दे दूंगी, तुम इसको मारो मत। कंस ने जबरदस्ती उसके हाथ से छीना, आज देवकी रो रही है बच्ची को छोड़ बचाने के लिए। कंस के कंस ने उसको बच्ची को पत्थर पे मारने के लिए ऐसे हाथ किया, कंस के हाथ से बच्ची छूट के आकाश में आठ भुजा हो गई, एट आर्म बन गई और कहने लगी मूर्ख कंस तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है, तुम मत समझो कि तुम बच जाओगे। देवी से असुर डरते हैं, राक्षस देवी के पूजा करते हैं डरते हैं। कंस डर गया, जाके देवकी के पांव पकड़े, वसुदेव को कहा ये देखो ये देवताओं ने गलत बात कही थी मेरे को कि आठवां लड़का होगा, देखो लड़की हुई ना, ये देवताओं ने धोखा दिया है, मैंने नहीं किया है, तुम्हारे बच्चों को मरवाने में देवताओं का हाथ है, वैसे भी हरेक का मौत अपने कर्म से आता है, मेरे को माफ कर दो, मैं आपको आजाद करता हूं, आप अपने घर जाओ। बड़े कुशल भाव से ईमानदार बन के भयभीत होके देवी से ऐसे कंस प्रार्थना करके अपने घर गया। वहां सुबह होते ही नंद गोकुल में आनंद का लहर उठ गई कि नंद बाबा के घर में बच्चे ने जन्म हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के घर में ऐसे गाने लगे, बजाई बजने लगी। नंद के घर 80 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ, बेटा था ही नहीं और उनका राजा था नंद, और आज उनके घर में उत्तराधिकारी के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। नंद के घर में तो आनंद होने लगा और कंस दूसरे दिन दोपहर को अपनी सभा में अपने बदमाश सारे मंत्रियों को बुलाया और फिर उन्होंने जो कंस को कहा वो कथा आज नहीं करेंगे, हम इस कथा को यहाँ आज विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोकुल में चले गए, वहां प्रकट हुए और 6 दिन में छोटे होते हुए पूतना जैसी बड़ी असुर को केवल अपने लिप्स से उसके स्तन को पीते हुए प्राण निकाल लिए। भगवान बच्चा है तब भी भगवान होता है, भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े हैं तब भी वही है, इसलिए भगवान कोई बन नहीं सकता, भगवान एक है, भगवान भगवान ही भगवान है और कोई दुनिया में भगवान नहीं बन सकता। हम सब भगवान के भक्त हैं, दास हैं, ऐसे अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्त भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। ये जन्माष्टमी में आप सब यहाँ आए हुए के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, परम्परागत प्रभुपाद जी के चरणों में, वैष्णव के चरणों में, कि आपके हृदय में भगवान शुद्ध भक्ति दे, आप अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाकर भगवान के कलयुग के नाम रूपी अवतार का आश्रय लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप निरंतर करके अपने जन्म को सफल कर लें, हमारी आपसे विनती है और भगवान को प्रार्थना है। निश्चित रूप